धवला पुस्तक 15वी लेक्चर नंबर 2
ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो वच्चायानं नमो लोए सौवसाऊनं निट्टवियट्ठकम्मं केवलनानेन दिट्टपरमट्ठम्
आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूत बलिया आचार्य। इसमें अभी जो हमारा जो वर्गणा खंड चल रहा था उसमें अंत में जो कुछ वहाँ अंतिम सूत्र आया था उसके आधार से ये जो उर्वरित शेष अनुयोग द्वारों की यहाँ चर्चा चलेगी। यहाँ लिखा है संत कम्म गभ्येशु शेष 18 अनुयोग द्वारेशु, वो 18 अनुयोग द्वार में से निबंधन अनुयोग द्वार की अपनी चर्चा चल रही है। कल हमने देखा था पहले पेज पर नीचे से तीसरी लाइन में जो द्रव्य जिसमें संबद्ध है उसे निबंधन कहा जाता है। संबंध में कोई ना कोई उसका संबंध बनता है, तो उसके बाद उन्होंने उसमें निक्षेप लगा के बताए थे। और फिर यहाँ किससे प्रयोजन है तो कहते कर्मों की बात है। यहाँ पर राग द्वेष किस में है, आत्मा में होते हैं ना। वो बताएंगे राग द्वेष में भी कहेंगे, दोनों ही ओर से कह सकते उसको। देखो ये यहाँ पेज नंबर 3 पर क्या बताया है कि वैसे ये तो संबंध तो 6 द्रव्यों का आपस में निबंधन बता सकते हैं, परंतु यहाँ अध्यात्म शास्त्र की मुख्यता होने से जीव और कर्मों की बात है, इसलिए कर्मों की अपेक्षा यहाँ बात उठा रहे हैं। तो पेज नंबर 3 पर नीचे से दूसरी लाइन, नो आगम द्रव्य निबंधन 2 प्रकार का है, मिला मूल कर्म निबंधन और उत्तर कर्म निबंधन। अब इसमें से मूल कर्म 8 है उसके निबंधन कहते हैं, यानी उसका संबंध किसमें बनता है। तो वहां हमने देखा था ज्ञानावरण का जो सब द्रव्यों में है और कुछ पर्यायों में है, तो सब द्रव्यों में संबंध जो है कौन से, केवल ज्ञानावरण का, और कुछ पर्यायों में वो अन्य 4 ज्ञानावरणों का, क्योंकि वो किससे जानते हैं और किसके जानने में वो रुकावट में निमित्त है, इसलिए उसको निबंधन कहा। इसी प्रकार दर्शनावरण का ऐसा कहा था, उस पर बहुत सारी चर्चा उन्होंने की क्योंकि दर्शन का कार्य आत्मा को ग्रहण करता है, उसको दर्शन ऐसे डेफिनेशन है। इस पर उन्होंने शंकाकार ने ऑब्जेक्शन लिया है, तो उसमें उन्होंने बताया था कि यहाँ पेज नंबर 6 पर बताया था कि कौन से आत्मस्वरूप को जानने का नाम दर्शन है, तो बाह्य अर्थ से संबद्ध है इसे आत्मस्वरूप का जानने का नाम दर्शन उन्होंने कहा था। फिर वेदीय सुख दुख में निबद्ध बताया, वैसे तो सभी घाती कर्म तो जीव विपाकी और ये वेदनीय को भी बाद में जीव विपाकी कहेंगे, दोनों ओर से उसका कथन होगा, परंतु उसका संबंध किससे है, जीव के किस में निमित्त है, तो सुख दुख में निमित्त है। मोहनीय कर्म आत्मा में निबद्ध है, आपका यही प्रश्न था कि मोहनीय को राग द्वेष में संबंध क्यों नहीं कहा, आत्मा में क्यों कहा, तो कहते कि वो जीव के गुणों का घात करने वाले, सम्यक और चारित्र नहीं होने देते तो क्या होता है, उसका विपरीत पना हो जाता है, इसलिए उसको जीव में सारे जो जीव विपाकी है उसको कह सकते हैं कि जीव के साथ निबद्ध है, परंतु कथन कहीं किस अपेक्षा से हो सकता है, कहीं किस अपेक्षा से होता है, वो तो भी बाह्य पदार्थों को देखकर ही उसका राग द्वेष होता है, उसको कहेंगे हम उसको बाह्य से निबद्ध, ये किस अभिप्राय से कथन करते हैं उस पर वो निर्भर है। घाती कर्मों को सभी जीव विपाकीय, तो हम जीव से संबद्ध भी कह सकते हैं और उसमें जो कार्य बन रहा है उसके अकॉर्डिंगली अन्य से संबद्ध भी कह सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि आयु कर्म भव के विषय में निबद्ध है और नाम कर्म तीन प्रकार से निबद्ध है बताया था, पुद्गल विपाक निबद्ध जिसको हम पुद्गल विपाकी कहते हैं, जीव विपाक निबद्ध जीव विपाकी, और क्षेत्र विपाक निबद्ध। आयु को तो लिया था भव विपाक में, यानी कर्मों का फल चार प्रकार से मिलता है, जीव विपाकी है, पुद्गल विपाकी है, भव विपाकी और क्षेत्र विपाकी। भव विपाकी में आयु को लेना और क्षेत्र में अनुपूर्वी को लेना। अब पुद्गल विपाकी में किसको किसको लेना है, तो हमने देखा था वो 62 कहो या 52 कहो, क्योंकि शरीर बंधन और संघात को जुदे जुदे कहते हैं तो 10 बढ़ जाते, इसको नहीं कहेंगे तो 52 हो गए। यानी उसमें हमने देखा था कल, शरीर है, बंधन है, संघात है, संस्थान है, अंगोपांग है, सहनन है, फिर में वर्ण गंध रस स्पर्श, उसकी तो हमने 20 गिनी थे। फिर निर्माण आतप उद्योत, अब ये जो स्थिर अस्थिर 6 है उसमें से यहाँ 2 ही जोड़ी लिए, स्थिर अस्थिर और शुभ अशुभ, और फिर हाँ तो त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक में से प्रत्येक साधारण यहाँ लिए, बाकी जीव में ले लेंगे। और अगुरु लघु 4 है उसमें से अगुरु लघु उपघात और परघात यहाँ लिया, चौथा कौन सा छोड़ दिया, श्वास उच्छ्वास, वही तो मैं कहती, यहाँ उसको छोड़ा, 3 को लिया, किसको किसको लिया उसकी बात है। यहाँ पर देखो त्रसादि 4 में से खाली उन्होंने प्रत्येक और साधारण लिया, स्थिर अस्थिर वगैरह 6 गिनते उसमें खाली यहाँ 2 लिए। अब हमको जीव विपाकी देखनी थी, तो जीव विपाकी में कॉमनली सभी घातिया कर्म जो जीव विपाकी 47 वो लिए, वेदनी की दोनों है वो जीव विपाकी क्योंकि सुख दुख में निमित्त है, गोत्र की भी दोनों जीव विपाकी है। अब नान कर्म की 27 बताई है, जो ऊपर नहीं बताई वो इसमें ले लेना है, तो उन्होंने तीर्थंकर आदि कहा है। अब हमने कल कर्मकांड निकाला था, अपन यहीं पर आगे उत्तर प्रकृतियों में उसकी लिस्ट है, देखो पेज नंबर 13 पर लास्ट पैराग्राफ, हमने वहां शरीर बंधन संघात लिया तो उसके पहले गति जाति से शुरुआत होती है, नाम कर्म की याद है क्या वहाँ अश्विन भाई, इंद्रिय कहाँ से आया, गति जाति आपको क्रम से पता नहीं है, हाँ बंधन संघात, देखो देखो गति जाति शरीर बंधन संघात संस्थान अंगोपांग सहनन, फिर वर्ण गंध रस स्पर्श आतप उद्योत अगुरु लघु उपघात परघात उच्छ्वास, फिर त्रस के 4 युगल लेना, त्रस स्थावर बादर सूक्ष्म पर्याप्त अपर्याप्त और प्रत्येक और साधारण, फिर स्थिरादि 6 युगल लेना, स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ सुभग दुर्भग सुस्वर दुस्वर आदे अनादे यशस कीर्ति और अयशस कीर्ति, और तीर्थंकर निर्माण, बीच में प्रशस्त प्रशस्त विहार गति रह गई थी, तो ये 42 पिंड पिंड मिलकर 42 प्रकृतियां होती है, इसी में 93 प्रकृतियां आ जाती है, 93 ख्याल में आते हैं बात। अभी आगे बढ़ते देखो इसमें से किसको किसको लेना, 13 पेज पर देखो 4 गति 5 जाति, या हम गति जाति ऐसा भी लिख सकते, फिर उच्छ्वास प्रशस्त अप्रशस्त विहाय गति, वहां जो छोड़े थे ना वो त्रस स्थावर बादर और सूक्ष्म पर्याप्त और अपर्याप्त सुभग दुर्भग सुस्वर दुस्वर आदय अनादय यश कीर्ति ऐश कीर्ति, वो छह युगल में से यहाँ चार युगल लिए, वहां दो लिए थे, और तीर्थंकर ये प्रकृतियां आत्मा में निबद्ध है क्योंकि इनका विपाक जीव में ही पाया जाता है। इसलिए ये 27 जो प्रकृतियां नाम कर्म की उसको जीव विपाकी कहा। तो यहाँ हम कल लिख रहे तो पेज 13 आत्मा में उसका फल मिलता है। शरीर की रचना में वो कर्म निमित्त है, परंतु ये जीव त्रस त्रस जीव कहलाते हैं, इसे स्थावर जीव कहलाते हैं। यश अयश का अयश यश का निमित्त जीव के साथ होता है। यानी यहाँ जो 27 प्रकृतियां हैं नाम कर्म की, उसको अगर गिनना है हमको तो गति जाति जाति में 5, फिर उच्छ्वास त्रसादी 6, 3 युगल हो गए तो 6, यानी उसको कैसे कहेंगे, त्रस स्थावर बादर सूक्ष्म पर्याप्त अपर्याप्त अभी वो चार युगल भी लेना है ना। देहागति लास्ट में बताया ना उन्होंने, अच्छा उच्छ्वास के बाद प्रशस्त प्रशस्त विहाय गति, ठीक है दो विहाय गति। हाँ अभी वो दुर्भग वगैरह वो तो चार जोड़ी, यानी सुभग दुर्भग सुस्वर दुस्वर आदेय अनादेय यश कीर्ति, यानी यशस कीर्ति और अयशस कीर्ति। और तीर्थंकर, ये तीर्थंकर आदि में ऊपर की सब आ गई। हम यहाँ नीचे पढ़ रहे थे, देखो 6 नंबर का सूत्र हमने देखा था पढ़ा था, फिर से पढ़ते हिंदी में। नाम कर्म 3 प्रकार से निबद्ध है, पेज नंबर 7। पुद्गल विपाक निबद्ध, जीव विपाक निबद्ध और क्षेत्र विपाक निबद्ध, यानी उसका विपाक किससे संबंधित है, बस इसकी बात है। वर्ण गंध रस स्पर्श और संघात आदि, नाम प्रकृतियों का विपाक पुद्गल में निबद्ध है क्योंकि उनके उदय से वर्णादि की उत्पत्ति देखी जाती है, यानी शरीर का वैसा वैसा वर्ण वगैरह बनता है। तीर्थंकर आदि कर्म जीव में निबद्ध है क्योंकि उनका विपाक जीव में ही पाया जाता है। आनुपूर्वी कर्म क्षेत्र में निबद्ध है क्योंकि उसका विपाक प्रतिनियत क्षेत्र में ही पाया जाता है। प्रतिनियत क्षेत्र क्यों कहा, क्योंकि जीव मरकर जब मोड़ वाली गति से जाता है तो विग्रह गति में ही उसका उदय पाया जाता है, और जिस यानी जीव के जितने प्रदेश जैसे फैले हैं वो उस आनुपूर्वी का क्षेत्र है उदय का, वो क्षेत्र विपाकी कहते उसको। इस कारण नाम कर्म 3 प्रकार से निबद्ध है यह सिद्ध होता है। हाँ ऋजु गति से जाने वाले को गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं होता। देखो बनती तो हर समय है क्योंकि हर समय कोई ना कोई गति बन रही है, गति के साथ गत्यानुपूर्वी नियम से बनती है, पर बनती है पर उसका उदय मात्र विग्रह में मोड़ वाली गति में ही होगा। अब जब हम कहेंगे ना आहार का आहारक बना रहता है कितना काल तक, अंगुल का असंख्यात विभाग ने असंख्याता संख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी, तो वहां वो आनुपूर्वी का उदय भी नहीं होगा है ना। हाँ उसका उदय नहीं होगा, बस पड़ी है, अगर उसके उदय के सन्मुख आते हैं तो अन्य रूप से होकर उदय में आकर चली जाएगी। वही हमने देखा कार्य क्या है कि देखो जीव का जो आकार है उसमें संस्थान नाम कर्म का उदय निमित्त रूप से होता है, और संस्थान नाम कर्म हमने देखा नाम कर्म के उदय के पैकेज होते हैं। विग्रह गति में विशिष्ट नाम कर्मों का उदय नहीं है, वहां पहुंचने पर होता है। तो ये सहनन है या संस्थान है उसका उदय वहां पहुंचते ही होता है पहले ही समय से। ये शरीर नाम कर्म औदारिक या वैकरिक शरीर नाम कर्म का उदय वहां पहुंचने पर होता है। तो विग्रह गति में कौन सा संस्थान रहेगा? पूर्व का, क्योंकि पहले का संस्थान बदलने का कोई कारण नहीं रहा, कारण ये नहीं है, निमित्त की बात है। तो पूर्व का वैसा आकार रहेगा। जब नए संस्थान नाम कर्म का उदय हो जाएगा तब उसका नया संस्थान उसको मिल जाएगा। इसलिए हमने देखा कि कोई मनुष्य मरकर कुत्ता हुआ तो मनुष्य के आकार का कुत्ता कहलाएगा जीव विग्रह गति में। अब आगे बढ़ते, गोदम अपानम ही निबद्धम, गोत्र कर्म आत्मा में निबद्ध है। कारण कि उच्च व नीच गोत्र जीव की पर्याय स्वरूप से देखे जाते हैं। अंतरायम दानादि निबद्धम, उच्च गोत्र में नीच गोत्र में उत्पन्न होता है वो जीव की आचरण आदि उसमें उसका निमित्त होता है, यानी जीव उच्च या नीच कहलाता है, बस इतना। जैसे तिर्यंच जो है वो सारे नीच गोत्र वाले हैं और नारकी नीच गोत्र वाले हैं, देव उच्च गोत्र वाले, मनुष्यों में दोनों ही पाए जाते हैं। अंतराय कर्म दानादिक में निमित्त है, कारण कि दानादिकों के विषय में विघ्न करने में उसका व्यापार पाया जाता है। यानी वो गोत्र कौन, हमारा गोत्र कौन सा है वो बात अलग है। हाँ, हमने वो नाम दिए हैं गोत्रों के क्योंकि फैमिली वाइज, वो बात अलग है। एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, व्यवहार में उसका अर्थ अलग है। अभी कहते अब उत्तर, इस प्रकार मूल प्रकृति निबंधन प्ररूपना समाप्त हुई। ये अभी तक हमने देखे थे प्रकृतियों की अपेक्षा बताए, अब एक एक मूल प्रकृतियों के भेद है उसको उत्तर प्रकृति कहते हैं, उसका निबंधन किसमें उसकी बात बताएंगे। अब उत्तर प्रकृतियों के निबंधन की प्ररूपना करते हुए इस प्रकार है, चत्तारी नाना वर्णीयाणी दव पज्जायाणम देश निबद्धाणी। चार ज्ञानावरणीय प्रकृतियां द्रव्यों की पर्यायों के एक देश में निबद्ध है। जैसे अवधि ज्ञान द्रव्य की अपेक्षा मूर्त द्रव्यों को ही जानता है, यानी अमूर्त को जान नहीं सकता। धर्म अधर्म काल आकाश और सिद्ध जीव इन अमूर्त जीवों को, अमूर्त द्रव्यों को, सिद्ध को अमूर्त कहा, संसारी को मूर्त कहा, क्योंकि कर्मों से तो हमेशा ही निबद्ध ही रहता है, कर्मों से बंधा हुआ ही है। इन अमूर्त द्रव्यों को वह नहीं जानता क्योंकि अवधि ज्ञान का निबंधन रूपी द्रव्यों में, यो जो निबंध निबंध रूपी लिखा है ना उसमें निबंधन और रूपी अलग करना, रूपी यानी पुद्गल मूर्तिक, अवधि ज्ञान का निबंधन रूपी द्रव्यों में है ऐसा सूत्र वचन है। वाता न रूपीषु अवधे है, तत्वार सूत्र में आता है रूपीषु अवधे। क्षेत्र की अपेक्षा यानी अवधि ज्ञान कहाँ तक जानता है, क्षेत्र की अपेक्षा पूरे लोक में। हाँ, भले उसका हम कहेंगे असंख्यात लोक तक वो सर्वावधि परमावधि जानते, उसकी उनकी सामर्थ्य बताए, पर वहां कोई पुद्गल ही नहीं है, इसलिए कहते क्षेत्र की अपेक्षा वह घनलोक के भीतर स्थित द्रव्यों को ही जानता है, उसके बाहर स्थित द्रव्यों को नहीं जानता, क्योंकि बाहर तो एक आकाश द्रव्य ही है और सारे ही पुद्गल घनलोक में ही है। काल की अपेक्षा वह असंख्यात वर्षों के भीतर जो अतीत व अनागत वस्तु है उसे ही जानता है, उनके बाहर स्थित वस्तु को नहीं जानता, यानी उससे अधिक काल को नहीं जानते। इसको कहते द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा सहित जानते हैं। भाव की अपेक्षा, भाव की अपेक्षा क्या कहेंगे कुछ पर्यायों को, भाव की अपेक्षा वह अतीत अनागत एवं वर्तमान काल को विषय करने वाली असंख्यात लोकमात्र द्रव्य पर्यायों को जानता है, यानी वो फिर अनंतों को नहीं जानेगा, असंख्यात तक उसकी लिमिट है। इसलिए अवधि ज्ञान द्रव्यों की समस्त पर्यायों को विषय करने वाला नहीं है। इसी कारण अवधि ज्ञानावरण सब द्रव्यों के एक देश में निबद्ध है ऐसा कहा है। सब द्रव्यों के एक देश में नहीं, सभी द्रव्यों को भी, केवल पुरुपी को और उसमें भी कुछ पर्यायों को, और कितने ही काल तक, पूरे काल को नहीं जानेगा अनादि अनंत को, ये उसकी लिमिट है। मनपरे ज्ञान भी चूंकि द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा एक देश को ही विषय करने वाले, वो भी मर्यादा सहित है, अतएव मनपरे ज्ञानावरणीय भी देश निबद्ध है। देश ने पूरा का पूरा नहीं है, कुछ पर्यायों को जानता है पार्षद। इसी प्रकार मति ज्ञानावरणीय और श्रुत ज्ञानावरणीय की भी देश निबद्धता का कथन करना चाहिए, यानी सभी पर्यायों को नहीं जान सकते, कुछ पर्यायों को जानता है। अब ज्ञानावरण के चार बताए, अभी एक केवल ज्ञानावरण बताएंगे। केवल नानावरणीयम सवदव्येषु निबद्धम, केवल ज्ञानावरणीय सब द्रव्यों में निबद्ध है, कारण कि वह समस्त द्रव्यों को विषय करने वाले केवल ज्ञान का प्रतिबंधक है। ख्याल में आई ना बात, सब द्रव्यों के साथ कैसा निबंधन बताएं कि सबको जानने वाले केवल ज्ञान का वो प्रतिपक्ष है, प्रतिबंधक है। शंका, यहां सूत्र में क्षेत्र काल और भाव का ग्रहण नहीं किया है, सब द्रव्यों में निबंध बताया, निबद्ध बताया, सब क्षेत्र में सब काल में नहीं कहा है, इसलिए उनका यहाँ कथन करना चाहिए। समाधान, नहीं, क्योंकि द्रव्यों से पृथक बुद्ध क्षेत्र काल और भाव का अभाव है, क्योंकि जब द्रव्य कहते तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव उसमें सब गर्भित हो जाते हैं। अब ये तो एक एक प्रकृति और उसके उत्तर प्रकृति, अभी दर्शनावरण की बात करेंगे। थीन गिद्धि तियम निद्धा पयलाय अचक्षु दंशनावरणीयम अपानम्मी निबद्धम, ये दर्शनावरण के भेद मालूम है? नौ नौ, कौन कौन से? दर्शन ने दर्शनावरण, अवधि बोलो ना, बहुत अच्छा, चांदी ये नौ है दर्शनावरण के, उसमें से यहाँ कौन से ले, स्त्यान गृद्धि तियम यानी स्त्यान गृद्धि त्रिक यत्र, तीन मले, तीन में कौन से हुए, स्त्यान गृद्धि निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला, फिर निद्रा प्रचला यानी पांचों निद्राएं, और अचक्षु दर्शनावरणीय आत्मा में निबद्ध है, कारण कि उक्त प्रकृतियां जीव के स्व संवेदन को घातने वाली है, यानी आत्मा का ग्रहण नहीं होने देती, इस तरह से यहां कथन आया है। शंका, रस स्पर्श गंध शब्द दृष्ट श्रुतव अनुभूत अर्थ को विषय करने वाली, ये किसका किसका विषय है? रस किसका विषय है? रसनेन्द्रिय का, रस पुद्गल का विषय नहीं है, विषय ने जानने वाला कौन है या दर्शन में लेना है, रसनेन्द्रिय स्पर्श स्पर्शनेन्द्रिय संबंधी है ना, और उस संबंधी दर्शन की बात है। गंध ग्रहणेन्द्रिय शब्द कर्णेन्द्रिय, अभी दृष्ट श्रुत व अनुभूत मन के, मन मन का विषय है ना, देखा हुआ, सुना हुआ है और भोगा हुआ या अनुभव किया हुआ, अर्थ को विषय करने वाली। देखो यहाँ क्या कहना चाहते हैं, अचक्षु दर्शन किसको कहेंगे? तो चक्षु इंद्रिय को छोड़कर अन्य इंद्रिय और मन, इनके द्वारा जो ज्ञान ज्ञान होता है उसके पूर्व में होने वाला वो अचक्षु दर्शन, ये उसकी परिभाषा है। देखो यहाँ क्या कहते हैं, रस स्पर्श गंध शब्द, ये तो एक एक इंद्रिय तो समझ में आवे, दृष्ट श्रुत व अनुभूत यानी मन, इनके अर्थ यानी अर्थ को विषय करने वाली, ये तो मैंने किसका विषय है उसको बताया, अपनी शक्ति विषयक जीव के उपयोग को अचक्षु दर्शन कहा जाता है। क्या कहना चाहते हैं, ये दर्शन वो आत्मा को ग्रहण करता है, वो दर्शन आत्मा को, पर वो आत्मा की कैसी है शक्ति? तो कहते कि इनको विषय करने वाली अपनी शक्ति का जीव का उपयोग, फिर से, इनको विषय करने वाली अपनी शक्ति विषयक जीव के उपयोग, यानी जीव का उपयोग है परंतु शक्ति इनको विषय करने की जीव की शक्ति है, पहले ही बताया था उन्होंने, कल भी बात आई थी ना कि बाह्य वस्तु बाह्य अर्थों से संबद्ध आत्म स्वरूप को जानने का ना दर्शन। अभी यहाँ भी बताया थे कि बाह्य जो अन्य जो विषय को करने वाली आत्मा की जो शक्ति विषयक जीव का उपयोग है उसको अचक्षु दर्शन कहा जाता है। ये तो शंकाकार का शंका चल रही उसकी, इसीलिए अचक्षु दर्शन का निबंधन बाह्य अर्थ होना चाहिए, यानी भले वो उसके शंकाकार के मुंह में डाला है परंतु यहाँ तो ये जो उसका वाक्य है वो तो आचार्य कहना चाहते हैं। और फिर ये कहकर फिर प्रश्न पूछते हैं, ये तो बाह्य अर्थ को विषय करने वाली अपनी शक्ति है और उसके विषय जो जीव का उपयोग है, तो इसलिए बाह्य अर्थ को विषय करने वाला ऐसा होना चाहिए, उसके संबंध में उसके निबद्ध कहो। इसलिए कहते हैं कि इसलिए चक्षु दर्शन का निबंधन बाह्य अर्थ होना चाहिए, तो आचार्य कहते यह कहना सत्य है, यानी उसको कह सकते हम, क्योंकि इसी प्रकार दर्शनावरण का उन्होंने पहले बता चुके थे मूल प्रकृतियों में, तो यहाँ पर भी वो हो सकता है। परंतु उक्त बाह्यार्थ निबंधनता की यहाँ विवक्षा नहीं की गई है। देखो कहाँ किस विवक्षा से कहना है, तो अभिप्राय तो वक्ता पर निर्भर है, उसने किस हेतु से, किस विवक्षा से, किस अपेक्षा से कथन किया है, तो उसको हमें समझना है, इसलिए उसका दूसरे का उन्होंने निषेध नहीं किया है। बाह्य अर्थ को विषय करने वाले अपनी शक्ति विषयक जीव का उपयोग, उसको बाह्य निबंधक भी कह सकते हैं, परंतु उसकी विवक्षा नहीं है, क्योंकि पहले तो उसकी विवक्षा करके कथन कर ही आए हैं, इसी प्रकार दर्शनावरण में वही कथन किया है कि सभी बाह्य अर्थों से यानी सभी द्रव्यों से और कुछ पर्याय उनसे, ये वहां कह दिए है, अभी अलग विवक्षा से बात हो रही है। शंका, उसकी विवक्षा क्यों नहीं की गई है आपका प्रश्न है ना? समाधान, सभी दर्शन ज्ञान के समान बाह्य अर्थ को विषय करने वाला नहीं है, इस बात के ज्ञापनार्थ यहाँ उसकी विवक्षा नहीं की गई है। अब आगे बढ़ते हैं, चक्षु दंशनावरणीयम गरु अलहु अनंत पदेशी येसु सवेशु निबद्धम। चक्षु दर्शनावरणीय कर्म गुरु व लघु ऐसे अनंत प्रदेश वाले द्रव्यों में निबद्ध है। अब देखो यहाँ बाह्य अर्थ को नहीं लेते हुए, यानी अभी यहाँ से स्व को नहीं लेते हुए बाह्य अर्थ की मुख्यता यहाँ ली, वहां स्व की मुख्यता ली, आत्मा से निबद्ध बताए। अब यहाँ क्या क्या गुरु और लघु ऐसे अनंत प्रदेश वाले द्रव्यों में निबद्ध है, यानी चक्षु इंद्रिय के द्वारा हम क्या जानते हैं, पुद्गलों को जानते हैं, कि परमाणु को हम चक्षु इंद्रिय से जानते हैं, एक परमाणु को नहीं जानते। चक्षु इंद्रिय के द्वारा, इंद्रिय के द्वारा एक परमाणु को नहीं, अरे अनंत अनंत परमाणुओं को, स्कंध को जानेंगे। इसलिए कहते हैं कि अनंत प्रदेश वाले द्रव्यों में निबद्ध है। अनंत प्रदेश वाला वो तो आकाश नहीं लेना है। चक्षु इंद्रिय का विषय क्या है, तो पुद्गल है, परंतु इंद्रिय के द्वारा हमारी इतनी वो कमजोरी है कि अनंतानंत प्रदेशों के जो स्कंध होगी, जैसे इसको जानते हैं तो इसमें अनंतानंत परमाणु है, इसको जानते हैं, तो इसके जानने के सन्मुख जो आत्मा है उसको ग्रहण करने वाला वो चक्षु दर्शन है। अभी इसको पढ़ेंगे, देखो। संख्यात व असंख्यात प्रदेश वाला पुद्गल द्रव्य चक्षु दर्शन का विषय नहीं होता, किंतु अनंत प्रदेश वाला पुद्गल द्रव्य ही उसका विषय होता है। इस बात को जतलाने के लिए अनंत प्रदेश वाले द्रव्यों में यह कहा है, यह वचन देशामर्शक है, इसलिए उससे अचक्षु संज्ञा वाले सब दर्शनों की यह प्ररूपणा करनी चाहिए। क्या कहना चाहते हैं, जैसे स्पर्शन इंद्रिय वाले जो हम देखते ना, रस का, स्पर्श का, गंध का, शब्द का ज्ञान होता है, परंतु उसमें भी वो अनंतानंत का स्कंध होगा तब उसका ग्रहण होगा। खाली एक परमाणु के रस गंध स्पर्श हम नहीं जानते हैं, तो ये बात वहां पर भी समझना। यानी बड़े बड़े स्कंधों के रस गंध स्पर्श, ये हम पांचों इंद्रियों के द्वारा जो पुद्गलों के पर्यायों को जानना होता है, वो कौन से है, तो स्कंध है बड़े बड़े। इसलिए कहते हैं कि वो अन्य इंद्रियों के लिए भी घटित हो जाते हैं, अन्य इंद्रिय न कहते हुए अचक्षु दर्शन के लिए भी वो बात घटित हो जाती है। गुरु व लघु यह अनंत प्रदेश वाले स्कंध का विशेषण है, क्योंकि चक्षु इंद्रिय के द्वारा लोह दंडादि रूप गुरु, यानी लोहे का दंड, खंबा कहो या जो कुछ है, लंबी ऐसे डंडी, लोह दंड वो गुरु, और अर्कतूल यानी आग के पेड़ का रुआ, वो आग की रुई समझते हैं ना, शेवरी का कापूस नहीं समझते, वो कपास आते ना एकदम हल्का, हाँ,
हाँ।
उसको क्या कहते हैं, आग, आग कहते हैं हिंदी में, आग कहते हैं यहाँ, लेकिन आग के पेड़ का रुआ यानी रुई, वो कापूस, वो बिल्कुल हल्की होती है, ऐसे उसके पेड़ है यहाँ पर भी साइन में, तो इस मातारी हम कहते थे उसके, इसे पूरते रहते, वो तो ऐसे फूट जाता है उसमें से वो बीज, बीज के साथ वो ऐसा कपास जैसा आता है, और वो हवा में उड़ते रहते, एकदम हल्का होता है। आदि रूप लघु पदार्थों का ग्रहण पाया जाता है, जानना होता है, नहीं बिल्कुल नहीं,
अरे
अनंत, अभी अभी हमारे पिन पॉइंट ऐसा, अगर कुछ हमें कर्ण दिखता है उसमें अनंत प्रदेश है। वो अवधि, यहाँ इंद्रिय की विषय की बात है, चक्षु दर्शन की बात है, अवधि दर्शन की नहीं। यहाँ लिखा ना अगुरु अलघु, यह विशेषण क्यों नहीं करते, गुरु व लघु ऐसा क्यों कहा, अगुरु और अलघु कह देते, तो कहते नहीं, क्योंकि परमाणु आदि चक्षु इंद्रिय के विषय नहीं होते, आदि में असंख्यात प्रदेशी तक सब ले लेना। शंका, सभी दर्शन अध्यात्म अर्थ को विषय करने वाला है, ऐसी प्ररूपणा पहले की जा चुकी है, किंतु इस समय क्या कहा, अध्यात्म अर्थ को यानी आत्मा को, पहले मैं बताया था दर्शन आत्मा को विषय करता है, ये बात बहुत बार हो चुकी है उनके, तो इस समय बाह्यार्थ को चक्षु दर्शन का विषय कहा है, इवन स्थान वृद्धि निद्रा वगैरह उसको भी आत्मा में निबद्ध कहा था, और चक्षु इंद्रिय के लिए बाह्य अर्थ में निबद्ध कह रहे हो, समझ में है ना, ये शंका करके शंका। कि इस समय बाह्यार्थ को, बाह्यार्थ ने बाह्य पदार्थों को चक्षु दर्शन का विषय कहा है। इस प्रकार यह कथन संगत नहीं है क्योंकि इसमें पूर्वापर विरोध है। यानी ये सारे जो दर्शन और ज्ञान के बारे में चर्चाएं चलती है ना, तो उसका समाधान यहाँ बहुत अच्छी तरह से दिया है। क्या कहते देखो, तो इस प्रकार यह कथन संगत नहीं है क्योंकि इसमें पूर्वापर विरोध है। कहीं कहते कि आत्मा के ग्रहण को दर्शन कहो और यहाँ तो बाह्यार्थ को ले लिया उसके अंदर। समाधान, यह कोई दोष नहीं है क्योंकि इस प्रकार के बाह्य पदार्थों में प्रतिबद्ध आत्मशक्ति का संवेदन करने को चक्षुदर्शन कहा है। अभी कितनी स्पष्ट यहाँ परिभाषा है, क्या कहा, जो पहले भी बताई थी उन्होंने कि बाह्य पदार्थों में प्रतिबद्ध आत्मशक्ति, ये आत्मशक्ति बाह्य पदार्थों के साथ अभी लगी हुई है, तो बाह्य पदार्थों में प्रतिबद्ध आत्मशक्ति का संवेदन करने को चक्षुदर्शन कहा है, यह बतलाने के लिए उपर्युक्त बाह्यार्थ विषयता की प्ररूपणा की गई है। अब कहते पांच दर्शनों के लिए अचक्षु दर्शन ऐसा एक निर्देश किस लिए किया है? अश्विन भाई कौन से पांच दर्शन? हाँ नहीं नहीं, वो तो निद्रा है। हाँ स्पर्शन संबंधी, रसना संबंधी, वर्ण वो है ना, स्पर्श रस गंध। वर्ण को छोड़ो क्योंकि वर्ण तो चक्षु का विषय है, स्पर्श रस गंध शब्द और मन, ये पांच है ना। देखो पांच दर्शन यानी अन्य इंद्रियों, पांच अन्य पांच इंद्रिय यानी स्पर्शन इंद्रिय, रसन इंद्रिय, या उसके विषय अगर बताने तो स्पर्श रस गंध शब्द और मन के विषय, ये पांच हो गए। इन सबको मिलकर एक अचक्षु दर्शन कह दिया, जो चक्षु ने वो अचक्षु, यानी पांच इंद्रियों संबंधी दर्शन ऐसा ले लो आप। पांच दर्शन है पांच इंद्रिय संबंधी। समाधान, उनकी परस्पर में प्रत्यासक्ति है इस बात के जतलाने के लिए वैसा निर्देश किया गया। प्रत्यासक्ति का एक्चुअली अर्थ होता है नजदीकता, पर इसमें कुछ समानता होनी चाहिए उनमें, कि जो चक्षु इंद्रिय को अलग से निकाला और चक्षु दर्शन नाम दिया और अन्य सबको मिलकर एक ही अचक्षु दर्शन नाम दिया, तो उसमें कोई तो विशेष कोई समानता होनी चाहिए। उसको यहाँ कहते कि उनमें आपस में प्रत्यासक्ति है, इसलिए शंकाकार पूछते हैं कि उनकी परस्पर में प्रत्यासक्ति कैसे है। समाधान, विषयी से पृथकभूत अतएव युगपत स्व और पर को प्रत्यक्ष होने वाले ऐसे चक्षु दर्शन के विषय के समान उन पांचों दर्शनों के विषय का दूसरों के लिए ज्ञान कराने का कोई उपाय नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? ये पेन आपने देखा, मैं भी देख रही हूँ, आप भी देख रहे हैं, तो ये विषय आपको भी क्लियर होता है, मेरे को भी हो रहा है। फिर से देखो, विषय से पृथकभूत, क्योंकि जो चक्षु है वो दूर से ही पदार्थ को जानता है और बाकी इंद्रियों उसके कांटेक्ट होने पर जानते हैं, प्राप्त होने पर, दो प्रकार से उसका आता है, प्राप्त होने पर जाते हैं या अव्यक्त ग्रहण होता है, ऐसा भी उसका कथन, दोनों ही प्रकार से आता है। तो कहते विषय से पृथकभूत, विषय ने जानने वाला, ग्रहण करने वाला और उससे जुदा, अतएव युगपत स्वर पर को प्रत्यक्ष होने वाले, यानी अपने को भी ख्याल में आता है और पर को भी ख्याल में आता है, ऐसे चक्षु दर्शन के विषय के समान। चक्षु दर्शन का विषय कैसा है? वो स्व को भी प्रत्यक्ष है, पर को भी प्रत्यक्ष है, इतने तक ख्याल में है? उसके समान उन पांचों दर्शनों के विषय का, जैसे हमने लड्डू का स्वाद लिया जो मेरे मुंह में है, तो आपको उसका स्वाद कैसे आएगा? तो कहते दूसरों के लिए ज्ञान कराने का कोई उपाय नहीं है, हम जो मन के द्वारा सोच रहे हैं वो तो आपके मन में क्या रहे होंगे, हमारे का वो विषय नहीं हो सकता है। इसकी समानता पांचों ही दर्शनों में है, यही उनमें प्रत्याशक्ति है। यानी जैसे चक्षु का विषय स्वर पर रहने हम स्वयं और अन्य जीवों को भी प्रत्यक्ष हो सकता है, वैसे अन्य इंद्रियों का विषय ये हमें वो हमारा विषय हो रहा है, अन्य जीवों को ये पता नहीं चल रहा, ये कह रहे। ख्याल में आती है कुछ बात? देखो देखो हमने आपको बताया अश्विन भाई आपके हाथ पर मच्छर बैठ के आपको काट रहा है, हमने उसको चक्षु से देखा, पर वो आपको उसका ज्ञान हो रहा है कि नहीं वो हम नहीं कह सकते। आपको स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा उसका ज्ञान होता है, वो आपको हो रहा है कि मैं नहीं कह सकती। ख्याल में है ना? यानी मान लेते ना अभी ठंड लगी सबको लग रही, हाँ तो अपन वो तो अपने अपने स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा उसका ग्रहण हो रहा है, दूसरा उसको क्या जान रहा है वो हम नहीं कह सकते। हो सकता है कि उसका उपयोग उसमें नहीं हो, अन्य का कुछ ज्ञान कर रहा है, ये भी हो सकता है। तो अन्य पांचों ही इंद्रियों के जो पांचों इंद्रिय अन्य चार इंद्रिय और मन का विषय दूसरा नहीं नक्की कर सकता कि हम क्या उससे जान रहे, परंतु चक्षु इंद्रिय का विषय सबको एट ए टाइम प्रत्यक्ष हो सकता है, यही उनमें प्रत्याशक्ति। अभी इसी का विशेषांत बता रहे। यहां शंकाकार का कहना है कि जिस प्रकार चक्षु दर्शन की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार की गई है, क्योंकि इंद्रिया तो पांच इंद्रिया और मन ये छह है मति ज्ञान के जो है, और उसके पहले दर्शन होता है ऐसा हम कहते हैं, तो वो सबको बाकी सबको एक चक्षु दर्शन में डाल दिया और अकेले चक्षु इंद्रिय के उसको दर्शन को चक्षु दर्शन कह दिया। तो कहते कि चक्षु दर्शन की तो स्वतंत्र सत्ता स्वीकार कही गई है, इसी प्रकार से त्वग इंद्रिया आदि से, ये त्वग इंद्रिया क्या होती है मनीषा बे? हाँ प्रेरणा बे, त्वग इंद्रिय का अर्थ क्या है? त्वक, त्वक यानी त्वचा, यानी स्पर्शन इंद्रिय क होता है वो त्वक, त्वक यानी त्वचा, त्वचा इंद्रिय नहीं स्पर्शन इंद्रिय। आदि में वो सब आ जाए ना, हाँ सब मन उनसे उत्पन्न होने वाले शेष पांच दर्शनों की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार न कर, ये तो हमने विश्लेषण देखा था, अभी उनकी भाषा में हम पढ़ेंगे विशेषण। उन्हें एक अचक्षु दर्शन के ही अंतर्गत क्यों कहा गया है, ये प्रश्न था। इसके उत्तर में यह कहा गया है कि जिस प्रकार चक्षु दर्शन की विषयभूत वस्तु विषयी से पृथक होने के कारण, विषयी ने हाँ अप्राप्यकारी चक्षु जिसको कहेंगे, क्योंकि वो चक्षु को टच करके तो देख ही नहीं सके, दूर है तो देख सकते है ना, तो उसे पृथक होने के कारण एक साथ स्वर पर दोनों के लिए प्रत्यक्ष होती है। कोई चीज देखते हम एक साथ बहुत सारे लोग एक चीज को देख सकते हैं, और इसीलिए दूसरों को उसका ज्ञान भी कराया जा सकता है। अब टीचर बोर्ड में लिखते एट ए टाइम तो सभी पूरी क्लास उसको देखती है समझती है। इस प्रकार उक्त पांचों दर्शनों की विषयभूत वस्तु विषयी से पृथक, विषयी क्या कहा? प्राप्यकारी। चक्षु को अप्राप्यकारी कहा क्योंकि चक्षु का विषय इंद्रिय से प्राप्य होकर वो उसका ग्रहण नहीं होता, दूर रहकर होता है। बाकी इंद्रिय और मन में जो मन की बात छोड़ो, मन भी अप्राप्यकारी को जानता है परंतु दूसरे को प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए उसको भी इसी में जोड़ दिया। देखो प्राप्यकारी और अप्राप्यकारी क्या होता है, स्पर्शन इंद्रिय का जो विषय है, तो स्पर्शन इंद्रिय यानी जो विषय उसका विषय, अभी ये जो स्पर्शन इंद्रिय से सॉफ्ट मुझे लग रहा है, पर सॉफ्ट लग रहा है तो यहाँ रखते हुए मुझे सॉफ्ट लग रहा है क्या, तो उसका इंद्रिय के साथ प्राप्य होता है यानी कॉन्टैक्ट होता है, कॉन्टैक्ट होकर जानता है। रसना इंद्रिय भी यहाँ कॉन्टैक्ट होता है तो वहां दूर लड्डू है, हम कहते नहीं नहीं पर हम शक्कर पीसते, तो मुंह में लगता है अपन उसके कण आते हैं सारे, उसको कहते हैं प्राप्यकारी, कांटेक्ट में आप प्राप्त होकर उसको जाना जाता है। प्राप्त होना है ना उसके इंद्रियों के कांटेक्ट में आना। अभी उसके भी दो प्रकार के अर्थ होते हैं, अव्यक्त ग्रहण और व्यक्त ग्रहण करके। अभी हाँ, तो प्राप्यकारी त्वगिंद्रियादि से यानी स्पर्शन इंद्रियादि जो विषय उससे पृथक न रहने के कारण एक साथ स्वर पर दोनों के लिए प्रत्यक्ष नहीं हो सकती। हम आपको जो कहते नहीं देखो ये पेन है, तो मेरे भी इंद्रिय का विषय है, चक्षु इंद्रिय का आपके भी है, परंतु मैंने मुंह में कुछ चीज रखी और आपको कहा कि देखो ये कैसा मीठा है, तो आप थोड़ी उस जो मेरे मुंह में मीठास का मैं वेदन कर रही हूँ या ज्ञान कर रही हूँ उसको तो आप नहीं जान सकेंगे। तो एट ए टाइम उसका हाँ, वो प्रत्येक अपना अपना जुदा जुदा लड्डू खा के कह सकता है कि हाँ ये मीठा है, ख्याल में नहीं उनको क्या कहना है। तो एक साथ सबको प्रत्यक्ष नहीं हो सकते। हम मन के द्वारा किसी चीज को याद करते, हमने बचपन की कोई घटना याद की और हम आपको कहेंगे देखो उसको ये हम ये जान रहे, तो आपके ज्ञान का थोड़ी विषय होने वाला है। हमने जो देखा हुआ सुना हुआ अनुभूत हुआ वो हम मन के द्वारा उसको रिवाइज कर सकते, मेमोरी में ला सकते। तो ये पांचों के लिए समानता है, स्पर्शनादि इंद्रिय और मन के लिए, यानी वो एट ए टाइम स्वर पर दोनों का विषय नहीं हो सकता, बस इतना डिफरेंस है चक्षु इंद्रिय अचक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन में। जरा उसमें बोलो,
पांचों इंद्रिया है वो आत्मा में निबद्ध है, वो कैसे ले सकते हैं? वहाँ स्व संवेदन का अभाव है, वो अपेक्षा से बात है।
स्व संवेदन का अभाव का कहना क्या है? देखो आत्मा में निबद्ध का अर्थ क्या किया है उन्होंने कि अन्य को विषय करने वाली अपनी शक्ति को उस उपयोग को अचक्षु दर्शन के। इसीलिए उसके साथ संबंध बताए, अन्य को विषय करने वाली आत्मा की शक्ति, इसलिए वो पर के संबंध से होती है। देखो इसी को आत्मा को आत्मा का घात करने आत्मा से संबंध बताए, इसी को पर से संबंध बताए। ज्ञान में भी ऐसा ही लिया था, ज्ञान में तो पर से संबंध खास उसकी बात है, परंतु ज्ञान और दर्शन में डिफरेंस क्या उन्होंने अभी तक किया है कि आत्मा को ग्रहण करने वाला वो दर्शन, पर वो कौन सा आत्मा? पर को विषय करता हुआ आत्मा, जो पर सम्मुख हुआ है ऐसा आत्मा लिया है।
पर को सम्मुख हुआ ही नहीं है, निद्रा जब भी निद्रा पतला पतला होती है तभी तो आत्मा पर के सम्मुख हुआ ही नहीं है,
इसीलिए उसको आत्मा का घात कहा ना।
नहीं तो
इसके स्व संवेदन को घात करने वाली बताया है, और बाकी जो बाह्य स्पर्श रस को बाह्य पदार्थों का विषय करती है, परंतु वो विषय यहाँ नहीं है, बस इतनी बात है। निद्रा कर्म है, वो जागृत अवस्था का घात कर रही है, किसी चीज को नहीं जानते वो। मैं निद्रा में भी सपने वगैरह मन का कार्य भी चल रहा है, मच्छर काटता है तो समझता है, वैसे वहां पर भी कुछ ना कुछ तो निद्रा भी लगी है तो कुछ ग्रहण तो हो रहा है, परंतु वहां बाह्य अर्थ की मुख्यता नहीं है, इसलिए उसको आत्मा से निबद्ध कह दिया। यहाँ लिखा ना वो उसकी विवक्षा नहीं की है, एक ही कथन को दो प्रकार से यानी एक ही बात को दो प्रकार से कथन कर सकते, आत्मा से निबद्ध है कहो या बाह्य पदार्थों से निबद्ध है, दोनों ही ओर होती है। देखो हम 10 नंबर पेज पर आए थे, हमने ये पढ़ा ना अभी, यही इन पांचों दर्शनों में प्रत्याशक्ति है। दर्शन है ने वो तो जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन उसकी बात नहीं है, अपन ये दर्शन ज्ञान दर्शन वाले दर्शन की बात है और इंद्रिया संबंधी दर्शन की बात है। अब 13 नंबर का सूत्र, ओहि दंशनावरणीयम रूपी द्रव्येषु निबद्धम, अवधि दर्शनावरणीय रूपी द्रव्यों में निबद्ध है। रूपी द्रव्य विषयक आत्मशक्ति के संवेदन का विघात करने के कारण, वो भी रूपी द्रव्य विषयक आत्मा की शक्ति लिया। आत्मा की शक्ति क्यों कहा? क्योंकि दर्शन ही आत्मशक्ति को बताने वाला है। तो रूपी द्रव्य विषयक आत्मशक्ति, उसका अवधि दर्शन कहा, और उसका विघात करने के कारण पहले के ही समान इसकी भी बाह्यार्थ विषयक प्ररूपना का कारण कहना चाहिए। इसको भी बाह्य अर्थ को निबद्ध है ऐसा क्यों कहा? क्योंकि रूपी पदार्थों को विषय करने वाली उस विषय का आत्मशक्ति के संवेदन का घात 10 नंबर के पेज पर आया है। इसलिए उसको बाह्य रूपी पदार्थों में निबद्ध ऐसा भी कह सकते हैं अवधि दर्शन को, पर है दर्शन यानी आत्मशक्ति को उपयोग है, उसका ग्रहण कर रहा है, पर कौन सी आत्मशक्ति? रूपी को विषय करने वाली आत्मा की शक्ति। 11 नंबर के पेज पर केवल दंशनावरणीयम सौव दव्य निबद्धम, देखो ये भी आत्मा को ही ग्रहण करने वाले है, फिर भी वो अभी सभी द्रव्यों के बारे में बताएंगे। केवल दर्शनावरणीय सब द्रव्यों में निबद्ध है, कारण कि केवल दर्शन की विषयभूत अनंत सम्यक्त्व ज्ञान चारित्र एवं सुख आदि रूप शक्तियों का अवस्थान बाह्य अर्थ का ही आश्रय करके पाया जाता है। सुहादि सत्यम सुहादि गानावरण सुहादि नानो चरण सुहादि, ठीक है, वो तो डिफरेंस ऑफ पार्ट है। देखो इसीलिए शंकाकार पूछते हैं, बाह्य अर्थ का आश्रय करके बताया है, यानी सम्यक तो यानी किसका सम्यक तो नव तत्वों का श्रद्धान या देवगुरु शास्त्र का श्रद्धान ऐसा भी कह सकते हैं। ज्ञान में भी तो सबके ज्ञान तो होता ही होता है, तो कहते केवल दर्शनादिकों की बाह्यार्थ निबद्धता का कथन किस लिए किया जाता है? समाधान, दर्शन का विषय बतलाने के लिए उसका कथन किया है, कारण कि दर्शन का विषयभूत अर्थ अध्यात्म रूप होने से दूसरों को प्रत्यक्ष नहीं है, अतएव इसके बिना उसका ज्ञान कराने के लिए और कोई दूसरा उपाय ही नहीं था। क्या कहना चाहते? देखो हम यहाँ सर्वत्र यही बात है कि दर्शन है वो अध्यात्म का यानी आत्मा को विषय करने वाला है, पर केवल ज्ञान किस किस को विषय करता है? तो सभी द्रव्यों के। तो दर्शन भी अभी आत्मशक्ति कैसे है? सब द्रव्यों के जो यह लिखा है ना, सब द्रव्यों को विषय करने वाली आत्मा की शक्ति है, और उसको ग्रहण करने वाला वो केवल दर्शन है, और वो उसको रोकने वाला होने से, यानी यहाँ क्या कहते हैं, दर्शन का विषयभूत अर्थ यानी पदार्थ कौन है? अध्यात्म रूप यानी आत्मा होने से दूसरों को प्रत्यक्ष नहीं है, दूसरे उसको नहीं जान सकते, तो उसको समझाने का और क्या तरीका है? तो इसलिए कहेंगे सब पदार्थों को, क्योंकि आत्मा ने सब पदार्थों का लक्ष्य किया है, ऐसा आत्मा लिया है। अब आगे देखते हैं। कहाँ पर ज्ञान और दर्शन
का विषय बतलाने वाला है, उसका कथन किया गया है, कारण कि दर्शन का विषयभूत पदार्थ
अध्यात्म रूप होने से दूसरों को प्रत्यक्ष नहीं है,
यानी जो दर्शन का विषय है वो हम दूसरों को नहीं बता सकते।
बराबर है,
क्योंकि दर्शन का विषय क्या है? आत्मा है। हाँ। कौन सा आत्मा? वो अभी पर पदार्थों को जानने के सन्मुख हुआ ऐसा आत्मा है, उसको तो नहीं बता सकते। हाँ। तो क्या बता सकेंगे? पर पदार्थों को बताएंगे। फिर से, अतएव इसके बिना उसका ज्ञान कराने के लिए और कोई दूसरा उपाय नहीं था। उसका यानी किसका? दर्शन के विषय का। दर्शन का विषय कैसे बताएंगे? आत्मा कहने से तो दूसरे को कैसा समझेगा? कौन सा आत्मा है दर्शन का विषय? पर पदार्थ के जानने के सन्मुख ऐसा आत्मा लिया, यहाँ लिखा ना, रूपी अवधि दर्शन में भी देखा, रूपी द्रव्य विषय आत्मशक्ति का समुदाय। ऐसे यहाँ केवल दर्शन क्या है? पूर्ण पूरा ही जो लोकालोक कहेंगे, यानी सभी द्रव्य गुण पर्याय है, उसको विषय करने वाली आत्मा की शक्ति, इस तरह से उसका लेना है। तो वो आत्मशक्ति कैसे बताएंगे? तो हम उसके दूसरी की बात करेंगे, ये कहना चाहते। यानी दर्शन के विषय का ज्ञान कराने के लिए, वो समझाने के लिए और कोई दूसरा उपाय ही नहीं था। ये पहले भी हमने इसमें देखी थी कि धौला में आया था ये द्रव्य संग्रह में, कि अन्य मतियों को ये बात नहीं समझा सकते, तो इसके उनको लिए वो तो ये परिभाषा बनाई, सामान्य अवलोकन और विशेष अवलोकन वाले, ऐसा उसमें भी आया है। ज्ञान दर्शन के बारे में यही बहुत सारे प्रश्नोत्तर है, उसमें बहुत कन्फ्यूजन चलती रहती है। अब 15 नंबर का सूत्र, सादा सादानम अप्पानम में निबद्धो, साता वेदनी और असाता वेदनी आत्मा में निबद्ध है, कारण कि साता व असाता संबंधी विपाक के फल रूप सुख व दुख जीव में ही पाए जाते हैं ना, क्योंकि साता और असाता के निमित्त से बाह्य पदार्थ नहीं आते हैं। बाह्य पदार्थों का जो वहाँ होना नहीं होना वो पदार्थों के अपनी परिणमन योग्यता से है, परंतु जीव उनका लक्ष्य करके सुखी दुखी होता है, लक्ष्य करते होता है हम कहेंगे उसको, पर है तो वो साता का फल है सुख दुख रूप। ये कौन सा सुख? अतीन्द्रिय सुख नहीं है, इंद्रिय सुख की बात है। मोहनीयम दुविहम, दंशन मोहनीयम चारित्य मोहनीयम चेदी तथ दंशन मोहनीयम सौवदव्येषु निबद्धम नो सौव पज्जायेषु। क्या कहा? मोहनीय कर्म दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय के भेद से दो प्रकार का है, उनमें दर्शन मोहनीय सब द्रव्यों में निबद्ध है, सब पर्यायों में नहीं। अभी दर्शन मोहनीय के भी भेद करेंगे। देखो क्या कहते हैं, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय सब द्रव्यों में निबद्ध है, क्योंकि वे समस्त द्रव्यों संबंधी श्रद्धान गुण का विघात करने वाली प्रकृतियां हैं। पहले भी बात आई थी ना, आपने पूछा था यहाँ पर अनंत सम्यक्त्व श्रद्धान वगैरह की बात आई थी ना। क्या कहते हैं, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व कैसे? सर्वघाती है, पूरा घात करती है। किसका? सर्वघाती किसका घात करती है?
अपने,
अरे श्रद्धान का। मिथ्यात्व का कार्य क्या है? श्रद्धान का घात। सर्वघाती क्यों कहा? पूरा घात होता है। और सम्यक प्रकृति को देशघाती कहा था, तो कहते हैं मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व कैसे? सर्वघाती है। तो उस वो जो दर्शन मुनि है वो सब द्रव्यों में निबद्ध क्यों कहा? क्योंकि वे समस्त द्रव्यों संबंधी श्रद्धान गुण का विघात करने वाली प्रकृतियां हैं। सभी द्रव्यों के बारे में उसका उल्टा श्रद्धान चल रहा है, स्व भी पर भी सभी। हाँ, विघात नाश श्रद्धान गुण का, सभी द्रव्यों संबंधी श्रद्धान गुण का विघात, विघात कहो घात कहो नाश कहो एक ही बात। सम्यक तो दर्शन मोहनी यानी सम्यक प्रकृति जिसको कहेंगे, कुछ पर्यायों में निबद्ध है, क्योंकि हमने देखा ना कुछ दोष लगता है, क्योंकि उसके द्वारा सम्यक्तों के एक देश का घात पाया जाता है, पूरा घात तो नहीं होता है पर उसमें चलमलन अगार दोष लगता है, उस संबंधी उसमें कोई घात होता है। शंका, दर्शन मुनि चूंकि घातिया कर्म है अतएव वह आत्मा में निबद्ध है, ऐसी प्ररूपना यहाँ क्यों नहीं की गई है? पहले क्या कही गई थी, मोहनीय कर्म आत्मा में निबद्ध है, पेज नंबर 6 पर बताया था, चार नंबर के सूत्र में, वहां तो बता ही था आत्मा में निबद्ध है, क्योंकि जीव का स्वभाव सम्यक और चारित्र है उसका घात करते हैं। अब यहाँ कहते हैं वो श्रद्धान किस संबंधी श्रद्धान, तो सभी द्रव्यों की संबंधी श्रद्धान उसका खोटा है, इसलिए मिथ्यात्व तो सभी द्रव्यों से संबंधित है, परंतु ये जो सम्यक मोहनीय है वो कुछ कुछ के लिए है। हाँ, इसलिए इसमें प्रश्न क्या पूछा, वो घाती कर्म होने से सारे ही घाती कर्म आत्मा से निबद्ध है क्योंकि वो जीव विपाकी है, ऐसा यहाँ क्यों नहीं कहा, पहले कहे आए हैं पर यहाँ फिर उल्टा कहने की क्या जरूरत थी? समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि 6 द्रव्य और 9 पदार्थ विषयक श्रद्धान का, इसमें कौन सा द्रव्य छूटा, सभी द्रव्य विषयक श्रद्धान का नाश हो गया है, 6 द्रव्य और 9 पदार्थ विषयक श्रद्धान का नाम समय दर्शन है, अतएव घाते जाने वाले जीव गुणों की प्ररूपना करने के लिए बाह्यार्थ निबंधन की प्ररूपना की गई। किस संबंधी श्रद्धान, तो 6 द्रव्य और 9 पदार्थ संबंधी उसका श्रद्धान घाता गया है, इसलिए सभी द्रव्यों से संबंधित है ऐसा कहा। ख्याल में आई बात? देखो, एक ही कर्म के लिए 2 अलग अलग विवक्षा प्ररूपना होती है, हमें उसका अपेक्षा समझनी चाहिए। अब कहते चारित्र मोहनियम अपानम में निबद्धम, चारित्र मोहनीय कर्म आत्मा में निबद्ध है, अब इसको आत्मा में निबद्ध कहा? अब इस पर फिर शंका, आपकी शंका आपने पूछी थी ना, राग द्वेष से निबद्ध कहो, यहाँ कहते हैं राग और द्वेष बाह्य अर्थ का आलंबन करने वाले, क्योंकि किसी पदार्थ को देखकर, किसी घटना को देखकर हम रागी द्वेषी होते हैं, किसी पैसे को देख देख कर लोभ होता है, बाह्य अर्थ को विषय होता है, और चूंकि उन्हीं के निरोध करने का नाम चारित्र है, अतएव चारित्र मोहनीय कर्म सब द्रव्यों में निबद्ध है ऐसा यहाँ कहना चाहिए। ये तो यह सत्य है, यानी वो झूठा ऐसा नहीं कहा पहले, किंतु उसकी यहाँ अपेक्षा नहीं की गई है, ये तो इनका अभिप्राय क्या था, उसकी विवक्षा नहीं करना, उसकी अपेक्षा से यहाँ कथन नहीं है, कारण कि बहुत बार प्ररूपना की जाने से उपदेश के बिना भी यहाँ उसका ज्ञान हो जाता है, यानी ये राग है वो पर के निमित्त से होते कथन करने की कोई जरूरत ही नहीं है, बाह्यार्थता तो सिद्ध ही हो जाती है, परंतु यहाँ अन्य अपेक्षा बताई है, यानी वो बाह्य अर्थ का आलंबन करने वाला है उसके साथ निबद्धित है ऐसा कहना कुछ गलत नहीं है, परंतु यहाँ अपेक्षा अलग है। इसलिए यहाँ आत्मा में निबद्ध बताया। आगे चलते हैं, अब कौन कौन से हो गए, ज्ञानावरण हुआ, दर्शनावरण हुआ, वेदनीय हुआ, मोहनीय हुआ, अब आयु, चार आयु को अलग अलग, क्योंकि यहाँ उत्तर प्रकृतियों की प्ररूपना चल रही है। निरयावम निरय भवम में निबद्धम, नारकायु नारक भव में निबद्ध है, कारण कि उसमें नारक भव धारण कराने की शक्ति देखी जाती है। अब वो तो घातने वाले थे तो उसमें उस अपेक्षा से परद्रव्यों से संबंध बताया, यहाँ नरकायु का डायरेक्ट उसका निमित्त उस आयु संबंधी है। शेषाणि भी अपपणो भवेशु निबद्धानि, शेष 3 आयु कर्म भी अपने अपने भवों में निबद्ध है, क्योंकि उनसे उन भवों का अवस्थान पाया जाता है, यानी उस भव में वो उसकी पर्याय वहां चालू हो जाती है। अन्य 3 आयु ने कौन से, तिर्यंचायु, मनुष्यायु, देवायु। नामम तिधा निबद्धम, जीव निबद्धम, पोगल निबद्धम, खित्त निबद्धम च। नाम कर्म तीन प्रकार से निबद्ध है। जीव द्रव्य में निबद्ध है, जिसको हमने जीव विपाकी कहा था, पुद्गल में निबद्ध है और क्षेत्र में निबद्ध है। इस प्रकार नाम का निबंधन तीन प्रकार का ही है, क्योंकि इनके अतिरिक्त अन्य कोई निबंधन पाया नहीं जाता। पुद्गल विपाक निबद्ध प्रकृतियों की प्ररूपना करने के लिए गाथा सूत्र कहते हैं। अभी हमने जो कल कर्मकांड की अपेक्षा से लिखवाए थे वो यहाँ बताएंगे। देखो पहले ऊपर की गाथा पढ़ेंगे, देखो दोनों ही गाथा एक साथ पढ़ना है। हम पंचे क्षत्रिय छप्पम चदोन्य पंचय हवंति अठेव शरीरादी पसंता पयडियो आणुपूविये अगुरुलहु परुवघादा आदा उज्जो वणिन नामं च पत्ते यथिरसुहेदर नामानीय पोगल विभागा। यानी पुद्गल विपाकी कर्म बता रहे हैं। वो देखा ना शरीरादि पसंता, शरीरादि से लेकर, देखो हम नीचे पढ़ते, देखो शरीर से लेकर पसंता ने स्पर्श तक, यानी कैसे गिनेंगे, शरीर बंधन संघात इस तरह से, संस्थान अंगोपांग सहनन वर्ण रस गंध स्पर्श, क्योंकि हमने देखे थे इनके जो उसकी विशिष्ट क्रम होता है उसी क्रम से याद हमने पहले भी किए थे। तो शरीर से लेकर स्पर्श तक यानी सब उसमें आ गए। शरीर से लेकर स्पर्श पर्यंत अर्थात ऊपर क्या बताया, पंच या क्षत्रिय छप्पम च, छ पंच है, यानी पंच ने शरीर पांच लिए, उन्होंने बंधन और संघात को अलग से नहीं लिया। छ लेने से सहनन संस्थान हो गए, तीन अंगो पांग ये ती यानी तीन अंगो पांग, फिर छ सहनन, पंच ने वर्ण पांच, गंध दो, रस पांच और स्पर्श आठ, ये शरीर से लेकर स्पर्श तक और उसकी संख्या बताई। ये अनुक्रम से पांच छ तीन छ पांच दो पांच और आठ प्रकृतियां, ये तो हो गई। और क्या क्या है अब दूसरी गाथे के, अगुरु लघु परघात उपघात आतप उद्योत निर्माण प्रत्येक वो साधारण, उन्होंने यहाँ इतना ही लिखा, प्रत्येक स्थिर और सुह और इधर इधर यानी उनके उनके साथ जो जोड़ी वाली युगल वाली, यानी प्रत्येक व साधारण, स्थिर के साथ अस्थिर, शुभ व अशुभ, ये नाम प्रकृतियां पुद्गल विपाकी है। हाँ अश्विन भाई ये बीच में लिखा है ना, सेकंड लाइन, एक की सेकंड लाइन, शरीरादि पसंता, शरीरादि ने शरीर से लेकर पस ने स्पर्श तक, पयडियो आणुपूविये, ये आणुपूवी का अर्थ क्या है, अनुपूर्वी ने क्रम से शरीर से लेकर स्पर्श तक क्रम से ये प्रकृतियां लेनी, यानी जैसे ना ऐसा क्रम उसको अनुपूर्वी कहेंगे। अब देखे तीन नंबर को पढ़ना है, ये जो हमने देखे वो क्या है, हाँ उसी का एक्सप्लेनेशन है, पांच कौन से वो बता रहे हैं। पढ़ेंगे, गदी जादी उत्साहो दौन्य विहाया तसादितीय युगलम सुभगादि चतुजुगलम जीव विवागाय तीर्थयरम। नहीं एक्चुअली ये गाथा के पहले उनका एक स्पष्टीकरण रह गया हमारा, गाथा का अर्थ तो ठीक है, हम पहले स्पष्टीकरण हमने देखा था, फिर भी इनकी भाषा में पढ़ेंगे। देखो पांच शरीर, पांच का अर्थ है पांच शरीर, छह संस्थान, तीन अंगोपांग, छह सहनन, पांच वर्ण, दो गंध, पांच रस, आठ स्पर्श, अगुरु लघु उपघात परघात, आतप उद्योत, प्रत्येक व साधारण शरीर, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ और निर्माण, ये नाम कर्म की प्रकृतियां पुद्गल निबद्ध है, क्योंकि इनके विपाक से शरीरादिकों की उत्पत्ति देखी जाती है। इस प्रकार ये 52 नाम प्रकृतियां पुद्गल निबद्ध है। यहाँ 52 का हमने 62 देखी थी, क्योंकि हमने बंधन और संघात के 5-5 और इंक्लूड किए थे, यहाँ वो शरीर में ही गर्भित कर दिए हैं। अब जीव निबद्ध नाम प्रकृतियों की प्ररूपना करने के लिए उत्तर सूत्र कहते हैं, जो अभी हमने पढ़ा था, गदी जादी उत्साह, अभी हमने 3 नंबर का श्लोक पढ़ा था, ऊपर गगा था, उसका भी अर्थ देखते हैं। गति, जाति, उच्छ्वास, 2 विहायो गतियां, कौन सी 2? प्रशस्त और अप्रशस्त। त्रसा आदि 3 युगल, यानी त्रसस्थावर, बादर सूक्ष्म, पर्याप्त अपर्याप्त। सुभग आदि 4 युगल, यानी सुभग दुर्भग, सुस्वर दुस्वर, आदेय अनादेय, यश कीर्ति ऐशस्य। और तीर्थंकर, ये प्रकृतियां जीव विपाकी है। तो जीव विपाकी हमने कितने देखी इन, हाँ नहीं, ये यहाँ पर हमने नाम कर्म की देखी ना जीव विपाकी, बाकी जीव विपाकी तो हमने वो सब देखी थी, टोटल तो देखी थी। नाम कर्म की 27 थी, नाम कर्म में से 27। पुद्गल निबद्ध में हमने 52 या 62 देखा था। हाँ, क्षेत्र निबद्ध तो 4 होती है। देखो अभी वो गाथा के नीचे, 4 गति, 5 जाति, उच्छ्वास, प्रशस्त व अप्रशस्त विहार गति, त्रसस थावर, वो थावर हुआ स्थावर, बादर सूक्ष्म, पर्याप्त अपर्याप्त, सुभग दुर्भग, सुस्वर दुस्वर, आदेय अनादेय, यश कीर्ति अयशस कीर्ति और तीर्थंकर, ये प्रकृतियां आत्मा में निबद्ध है, क्योंकि इनका विपाक जीव में ही पाया जाता है। इस प्रकार ये 27 नाम प्रकृतियां जीव विपाकी है।
प्रकृति आत्मा में निबद्ध है,
हाँ,
वो कैसे संबद्ध है?
यानी आत्मा से संबद्ध है ना, यानी उसके के शरीर वगैरह की रचना नहीं हो रही है तीर्थंकर प्रकृति के कारण। उसके उदय में वाणी का छूटना, अगर जो ये निमित्तपना जो बनता है वो हो जाता है। पुद्गल विपाकी नहीं है। अब क्षेत्र निबद्ध प्रकृतियों की प्ररूपना करने के लिए गाथा सूत्र कहते हैं, 4 नंबर की गाथा। चत्तारियाणु पूवि खित्त विवागाति जिनवरुद्दिठा नीचुच्चा गोदानम होदि निबंधो दुअपाणे। 4 अनुपूर्वी प्रकृतियां क्षेत्र विपाकी है, ऐसा जिनेन्द्र देव के द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। ऊंच व नीच गोत्रों का निबंध आत्मा में है, क्योंकि नाम के बाद वो गोत्र का भी कहना था, इसलिए इसी गाथा में गोत्र की भी बात बताई। 4 अनुपूर्वी प्रकृतियां क्षेत्र निबद्ध है, क्योंकि प्रतिनियत यानी निश्चित क्षेत्र में ही उनका फल पाया जाता है, परंतु नीच व ऊंच गोत्र का निबंध आत्मा में ही है, क्योंकि उनका फल जीव में ही पाया जाता है। अब 5 नंबर, दानंतराय दाने लाभे भोगे तहे व उपभोगे गहने होंति निबद्धा वीर्यम जह केवलावरणम। दानांतराय दान के ग्रहण में, लाभांतराय लाभ के ग्रहण में जो उसमें विघ्न आता है ना, भोगांतराय भोग के ग्रहण में, तथा उपभोगांतराय उपभोग के ग्रहण में निबद्ध है। वीर्यांतराय केवल ज्ञानावरण के समान अनंत द्रव्यों में निबद्ध है, क्योंकि हमेशा ही ज्ञानावरण के साथ वीर्यांतराय का भी वो जो क्षय शोभशम यथायुग्य जहाँ पाया जाता है, हमेशा ज्ञान के पर्याय में वीर्यांतराय की भी बात उठाते, इसलिए वो अनंत द्रव्यों में निबद्ध है। ये 5 ही प्रकृतियां जीव निबद्ध ही है, क्योंकि वे घातिया कर्म है, किंतु उनके द्वारा घाते जाने वाले जीव गुणों का ज्ञापन कराने के लिए इस गाथा की प्ररूपना की गई है। दान में विघ्न करने वाला दानांतराय, लाभ में विघ्न करने वाला लाभांतराय, भोग में विघ्न करने वाला भोगांतराय और उपभोग में विघ्न करने वाला उपभोगांतराय है। ग्रहण शब्द का अर्थ उपभोग ग्रहण है, इस कारण इसका प्रत्येक के साथ संबंध करना चाहिए, यानी वो ग्रहण शब्द सबके लिए लगाना। जिस प्रकार केवल ज्ञानावरणीय की अनंत द्रव्यों में निबद्धता की प्ररूपना की गई है, उसी प्रकार वीर्यांतराय की भी प्ररूपना करनी चाहिए, क्योंकि जीव से भिन्न द्रव्य का आश्रय करके वीर्य की प्रवृत्ति देखी जाती है। इस प्रकार इस संयोग द्वार में इतनी ही प्ररूपना की गई है, क्योंकि शेष अनंत पदार्थ विषयक निबंधन के उपदेश का अभाव है। क्या कहा? अनंत पदार्थों संबंधी जो निबंधन है उसकी यहाँ चर्चा नहीं है, बस इतनी ही यहाँ चर्चा की है। इस प्रकार निबंधन अनुयोग द्वार समाप्त हुआ, बस आठ कर्म और उसके उत्तर प्रकृति इनकी यहाँ चर्चा की है। बाकी वो आठवां अनुयोग द्वार है प्रक्रम अनुयोग द्वार, वो हम कल से शुरू करेंगे। चावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो। मैं